मेरे प्यारे युवा साथियों नमस्कार। आज 6 अप्रैल 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आप मित्रों के नाम हैं सौरभ मौर्या, आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, विकास कुमार राय, आप चंदन नगर पश्चिम बंगाल से हैं, पवन कुमार दिल्ली से हैं, गोविंद पंडित राव देशमुख अंबाजगई महाराष्ट्र से हैं, अमोद प्रसाद समस्तीपुर बिहार से हैं और साक्षी राठी आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो सौरभ, विकास, पवन, गोविंद, अमोद और साक्षी, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब कुछ सूचनाएं, और ये वे सूचनाएं हैं जो मैं हर शुक्रवार को आप सबको देता हूं, बावजूद इसके कि आप में से बहुत से पहले से ही इन सूचनाओं से अवगत होते हैं। पहली बात तो ये कि सैटरडे संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें भी सैटरडे को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपका जो संडे है उसे आप सब भरा पूरा बना सकें। और उसके तहत योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र के 2 आर्टिकल, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक मित्रों, आपको वीकली क्वेश्चन भी दिया जाता है जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर होता है, और वह इसलिए दिया जाता है कि आप उसको आधार बनाकर अभ्यास कर सकें। और मैं बार बार आप सबको यह सजेस्ट करता हूं कि आप उसमें हड़बड़ी मत करें, जल्दबाजी न दिखाएं, प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फिर उस प्रश्न पर फिर तैयारी करें, यानी कि फिर पढ़ाई करें। और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, आपको लगे कि नहीं, अब आप इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में आ गए हैं, तब आप उसका उत्तर लिखने का अभ्यास करें। और इसके साथ ही मित्रों, जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा मुख्य विषय के बारे में। आज मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग संसद में कामकाज विषय पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, सरकार ने मौद्रिक नीति की घोषणा की है। मौद्रिक नीति हर 2 महीने में आती है और इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी कई बार बातें कर चुके हैं, इसलिए मित्रों मैं दोहराने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि दूसरी चीजें हैं जिन पर हमको बात करनी चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। बस याद दिलाना चाहूंगा अपने क्लास स्टूडेंट्स को कि अब चूंकि मौद्रिक नीति सरकार की आई है, और खासकर 8वें बैच के स्टूडेंट, अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो यहां से मुक्त होकर के गए हैं, तो बेहतर होगा कि वो इस न्यूज को आज बहुत ध्यान से पढ़ें। और ध्यान से पढ़ने का मतलब है उसे समझने की कोशिश करें, यानी कि रिजर्व बैंक अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है मौद्रिक नीति को लेकर के कि उसने ऐसी मौद्रिक नीति क्यों घोषित की है, तो डेफिनेटली वो कुछ रीजन देगा। तो आप पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये जो बात कह रहा है इसका मौद्रिक नीति से क्या रिलेशन है, या कि कोई इकोनॉमिस्ट ही या इंडस्ट्रियलिस्ट इसे वेलकम कर रहा है या इसकी आलोचना कर रहा है, तो उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई मौद्रिक नीति में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, कैसे इम्पैक्ट होगा, कि कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, या जो भी आपको चीजें पढ़ने को मिलती है उनको विश्लेषित करने की कोशिश कीजिए। मित्रों, 2 वाक्य मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं, राइट। और ये देखिए, मैंने अपने क्लास स्टूडेंट को स्पेशली कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जो दूसरे मेरे प्रिय श्रोता हैं उनसे मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, उनको बस एक अलग तरीके से मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस तरीके से अपने क्लासेस का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। मतलब वो ये मान करके न चलें कि यहां की 15 दिन की क्लासेस खत्म हो गई है तो यहां की बात खत्म हो गई है। क्लासेस खत्म हुई है लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, और वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप अपनी मंजिल को हासिल न कर लें। मित्रों, मैं आपको 2 वाक्य इकोनॉमिक्स के पढ़कर सुना रहा हूं जो मौद्रिक नीति से संबंधित हैं और अभी जिनके बारे में किसी ने कुछ कहा है। पहली बात है जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी, उन्होंने कहा, हमने पाया है कि मुद्रा स्फीति की राह में अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं। इसी वजह से तटस्थ रुख अपनाते हुए दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। आपकी सुविधा के लिए मैं एक क्लू दे रहा हूं कि जो अनिश्चितताएं की जो उन्होंने बात कही है वो अनिश्चितताएं मुद्रा स्फीति को लेकर है। अभी मुद्रा स्फीति ठीक ठाक है सर, बैंक का मानना है, लेकिन वो ये मान के चल रहे कि आगे इसमें वृद्धि हो सकती है। ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं, तो ये अनिश्चितता उसको लग रही कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन हो जाए, तो इसीलिए जो मौद्रिक नीति है उनकी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसको आप सब अपने अपने लेवल पर एक्सप्लेन करें। जो दूसरा वाक्य है वो देखिए, अखबार से ही पढ़कर मैं सुना रहा हूं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा स्फीति अनुमान में कमी और जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में दरों में संभावित कटौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं वाक्य को रिपीट कर रहा हूं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा स्फीति अनुमान में कमी और जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में दरों में संभावित कटौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है। राइट, इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां आपको भ्रम से बचाने के लिए मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं मित्रों, कि जब मैं पहले वाक्य की चर्चा कर रहा था तब मैंने कहा कि उसको मुद्रा स्फीति के बढ़ने का अनुमान है ना, और जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आगे चल करके मुद्रा स्फीति के अनुमान में कमी हो रही है। तो देखिए, जो पहला वाक्य है वो अभी की मौद्रिक नीति के ऊपर है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी जो उन्होंने मौद्रिक नीति घोषित की है उस अपने अनुमान को आधार बना करके की है, और जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं आगे जाकर के क्या होता है ना। तो दोनों में ये फर्क है, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, तो फिर आप चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, ये मौद्रिक नीति के बारे में थी। दूसरा, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था, अजरबैजान का जो शहर है, कैपिटल है बाकू, वहां मंत्रिमंडलीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे मिनिस्टर गई हैं। उसमें आपने एक वाक्य सुना और वो ये था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, इसका भारत शुरू से ही पक्षधर रहा है कि सुधार किया जाना चाहिए, और उसके लिए अपनी भारत दावेदारी भी पेश करता रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको इस टॉपिक पर तीन चार साल पहले बकायदे सिविल सर्विस मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपने खबर एक ये भी सुनी कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जी, वो 3 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी यह यात्रा है, तो इस यात्रा के दौरान जो बातचीत होंगी, जो समझौते होंगे, जो भी समीक्षाएं होंगी, प्लीज उन पर आप थोड़ी सी नजर रखें। और अभी एक रफ पेपर जैसा बना लें, एक पेज बना लें और उसमें चीजें नोट करते चले जाएं, और जब उनकी यात्रा पूरी हो जाए और इस पर जो आर्टिकल्स और कमेंट आएंगे वो पढ़ लेने के बाद फिर आप उस पर फाइनल पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं हमारे मुख्य विषय पर, संसद में कामकाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इस पर प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी संभावना हो सकती है। इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो देवेंद्र सिंह असवाल जी का है, जो पूर्व अपर सचिव लोकसभा रह चुके हैं, यानी कि वो लोकसभा में काम कर चुके हैं और उन्होंने उन सारी स्थितियों को देखा, समझा और परखा है, इसीलिए वो इतना खूबसूरत आर्टिकल भी नो डाउट की लिख सके हैं। राइट, ये हिन्दुस्तान में छपा है, दैनिक हिन्दुस्तान में, हिन्दी में आर्टिकल है। मित्रों, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, देखिए आर्टिकल आपके लिए नहीं लिखा गया है, मतलब ये आर्टिकल को सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं लिखा गया। हाँ, जो कंपटीशन की मैगजीन में आप पढ़ते हैं तो बट नेचुरल है कि उसमें आपको ध्यान में रख करके बातें कही गई हैं, यहां ऐसा नहीं है। तो फिर इसमें से आप चीजें अपने लिए निकालेंगे कैसे, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट के सामने। तो इसके लिए देखिए, सीधी सी बात होती है कि पहले तो हमारे दिमाग में ये फ्रेम आना चाहिए कि इस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न सिविल सर्विस में पूछे जा सकते हैं। मित्रों, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन उठा करके देखें, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो किस तरीके में उनके कोई बहुत उलझाने वाले तरीके नहीं होते हैं। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे अभी संसद में कामकाज का टॉपिक है, इसके बारे में एक तो सामान्य सी जानकारी आपकी कितनी है, करंट पर बेस्ड कितनी सामान्य सी जानकारी है। दूसरी ये है कि जो चीजें लिखी जा रही हैं, जो समीक्षाओं में आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं, कितनी सतर्कता के साथ आप उन्हें देख रहे हैं, यानी कि उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि उनकी भी आपको कितनी जानकारी है। और इन सबको सुनने और जानने के बाद आपका अपना विचार क्या बना, आपके अपने दृष्टिकोण के तहत क्या होना चाहिए। बस ये दो तीन सिंपल सी चीजें होती हैं। अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसे मित्रों आप किसी भी टॉपिक पर अप्लाई करके देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब उनके एंगल्स अलग अलग हो जाएंगे, जब आप चीजें यही रहेंगी, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो उनके एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बातें लगभग लगभग वही होती है जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि जब आप ये आर्टिकल पढ़ें, तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो मैंने अभी बातें कही हैं उनके आधार पर इसमें से पॉइंट्स निकालें। जैसे पॉइंट्स इसमें क्या निकलेंगे कि भाई जो संसद है हमारी, संसद का रोल क्या है, पहला पॉइंट आप देखिए क्या इसमें कुछ है। फिर दूसरा है कि संसद में गतिरोध हो रहा है, संसद में विरोध हो रहा है, संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, जा रही है, तो क्या संसद का ये काम है, क्या ये जो काम किया जा रहा है वो सही है। दूसरा ये है कि अगर ये सही है तो क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो क्यों गलत है। फिर अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में देखिए विरोध तो होना ही होना है, विपक्ष की उपस्थिति ही किसी भी तंत्र को लोकतंत्र बनाती है। तो अगर विपक्ष का विरोध जायज है और संसद गतिरोध में है, तो क्या संसद के गतिरोध ही एकमात्र विरोध व्यक्त करने का तरीका है, या और भी कोई दूसरे उपाय हो सकते हैं जिससे कि विपक्ष अपने विरोध को प्रकट कर सके। फिर आपको हम ये भी देखते हैं, चूंकि दुनिया में बहुत दूसरे देशों में लोकतंत्र है, तो दूसरे देशों में क्या स्थिति है, क्योंकि वहां भी आखिर में लोकतंत्र है, विपक्ष है, वहां भी विरोध होता होगा, तो वहां संसद में क्या हो रहा है। तो आपको इसमें दो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज मिल जाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से बेस में रहे हैं, उसमें एक ही ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा इंग्लैंड का, आपके अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के दिए हुए कि साल में कितने दिन उनकी बैठकें होती हैं और कितने घंटे कामकाज होता है, फिर भारत का भी दिया हुआ है, तो ये एक कंटेंट हो जाएगा कि वहां भी तो आफ्टर ऑल विरोध हो रहा है लेकिन गतिरोध पैदा नहीं हो रहा है। चलिए, ये इस आर्टिकल से हो गया, लेकिन आप इस बीच में कुछ और घटनाएं देख रहे हैं, कुछ और खबरें सुन रहे हैं। जैसे एक खबर है कि जो एनडीए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने घोषणा की है कि जो 21, 22, 23 दिन जो भी संसद गतिरोध में रहा है, संसद में कामकाज नहीं हुआ है, तो उसकी सैलरी नहीं लेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने ये भी सुना है कि हमारे जो सचिन तेंदुलकर जी थे, जिन्हें मनोनीत किया गया था, चूंकि उनको ये लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया है, तो उन्होंने अपनी जो भी सैलरी थी वो सरकार को लौटाने की बात कही है कि मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो मित्र, नैतिकता की दृष्टि से ये एक थोड़ा सा ठीक हो सकता है, ठीक है, जब हमने काम नहीं किया। आप देखिए, आप कहीं भी नौकरी करते हैं, अगर आप छुट्टी लेते हैं तो बट नेचुरल है कि आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। फिर जब आप अपना एनालिटिकल माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि भैया हमने 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा था और आपको लग रहा था कि आप रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कदम आपको 6 महीने 1 साल में उठा लेना चाहिए था, ताकि हम किसी दूसरे को वहां भेजते तो वो कम से कम काम करता। हमने आपको सैलरी पाने के लिए वहां नहीं भेजा है, हमने अपने लिए कानून बनाने की दृष्टि से भेजा है कि भैया वहां जाइए, बहस कीजिए और हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाइए, ताकि हमारा विकास हो सके, हम अच्छे से रह सके। तो आपने अगर वहां आप रहे साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी रहे, और आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सैलरी देने मात्र से आप उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे? ये एनालिटिकल माइंड यहां अप्लाई कीजिए और कुछ सोचिए, फिर आपको कुछ निष्कर्ष मिलेंगे और फिर आप देखें कि किस तरीके से एक टॉपिक पर आपकी ऐसी तैयारी हो जाती है कि अब उस पर कुछ भी कोई पूछे आप देने की स्थिति में आ जाएंगे और आप में वो आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका अपनाना होगा, मित्रों, ये मैंने अपना तरीका बताया है, आपको दूसरे तरीके भी अगर मालूम है तो आप उन्हें भी अपना सकते हैं, लेकिन बस कुल मिलाकर के ये है कि जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए और आपकी जो जरूरतें हैं उसका मैच यूपीएससी की जरूरतों के साथ बैठना चाहिए। तो मित्रों, अब आज के न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। न्यूज पेपर्स की कुछ मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: खुशबू कुमारी, रीना गिरी, रोहित वर्मा, नीलकांत भट्ट गुजरात से, अमित कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और राहुल शर्मा पंजाब से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा, शनिवार रविवार को आप सबसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। आपके ये दो दिन बहुत सुखद हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं दो दिनों के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।